खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के हजूर झुकें, अब्रानियों 4 बाप उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और अरादों को जांचता है। इसी तरह दूसरा पत्रस 1 बाप उसकी 20वीं और 21वीं आयत, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं होती, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीर के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। दूसरा तमोथियस 3:16-17, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, तालीम और अल्जाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक काम के लिए, हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आए अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें, क्योंकि उसका कलाम जिंदा है, वो हमारे ख्यालों दिलों को जांचता है। उसका कलाम सच्चा है, और उसका कलाम इसीलिए हमें दिया गया है ताकि हमारी तरबियत और नसीहत हो, ताकि जमीन पर कामल जिंदगी बसर करें। आए अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें। कादर मुतले खुदा मसीह यस्सु में आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है, आज की जिंदगी की सांस के लिए जो खुदावन खुदा हम रखते हैं, और ये तेरे फजल का खुदावन खुदा सबूत है कि तेरा फजल हर सुबह हमें ताजा मुहैया है। तेरे फजल के तख्त के लिए खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं, और इस खुदाम खुदा बड़ी बरकत के लिए कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी के लिए दिया गया है, ताकि इस दुनिया की तारीखी में इस नूर में चलने वाले बने, ताकि तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। सो हम सबको ले रूहुल कुद्दस की ममूरी में जो कुछ आज तूने हमारे लिए ठहराया है, हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमेन। सो मेरे साथ निकाले नए अहदनामों में से रोमियो 12:1 उसकी 1-2 आयत में से, हम जो कलाम खुदा के आयना में से सीख रहे हैं, रूत की किताब में से रूत की जिंदगी, और इन 1-2 आयत में हम रूत की जिंदगी को पूरे तौर पर देखते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम ऐसा गहरा समंदर है जिसकी तह तक हम नहीं पहुंच सकते, और रूहुल कुद्दस की मामूरी के बगैर हम रूह की गहरी बातों को और उन सच्चाइयों को कभी भी नहीं जान सकते जब तक हम इस रूहुल कुद्दस की मामूरी में जो हमें बख्शी गई है मामूर नहीं होते। सो 1 आयत में यूं लिखा है, पस ए भाइयों, हर एक ईमानदार से बात हो रही है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। यहां पर पालूस रसूल इल्तमास करता है, गुजारिश करता है हर एक ईमानदार से, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यहां पर पालूस रसूल कहता है कि तुम जो मसीह यसू में काहिन हो, तुम अपने आप को खुदावंद के हजूर जिंदा पाक तौर पर उसके हजूर अपने आप को नजर करो, क्योंकि यही खुदा को दिल पसंदीदा है, यही तुम्हारी रूहानी खिदमत या रूहानी इबादत है जब हम इसे यूनानी में देखते हैं। और दूसरी आयत में कहता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, वो बात कर रहा है इस मौजूदा जहान की, जिसे इस जहां के खुदा ने यानी के तारीकी के दौर में, कहता है कि इस तारीकी के दौर में, इस तारीकी के हम शक्ल या तारीकी में जिंदगी ना गुजारो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से। यहां पर वो बयान करता है कि जब तुम यीशु मसीह पर ईमान लाए थे, तुम नए मखलूक बने थे, कहता है बल्कि अकल नहीं हो जाने से, अपनी सूरत बदलते जाओ, यानी कि तुम जब नए बनाए गए थे अब तुम्हें जरूरत है मुसलसल तौर पर अपनी सूरत को बदलना है, और वो सूरत किस पर ढालनी है, खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल बनना है। और कहता है ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी को तजर्बे से मालूम करो। और बाइबल मुकद्दस फिलिपियों 2:5 में कहती है जैसा मिजाज मसीह का है वैसा ही मिजाज रखो, यानी कि मसीह की सूरत, मसीह की शख्सियत, मसीह की मानद बनना, मसीह की सूरत पर ढलते जाना। सो इन दो आयात को हम रूत की जिंदगी में, रूत की किताब में देखते हैं। आज हम उस तीसरी बात को सीखने के लिए जा रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है मसीही जिंदगी को गुजारने के लिए। हमने रूत की किताब में, मेरे साथ निकाले रूत की किताब को पुराने अहदनामा में, ये आपको यशवा, कसाद और उसके बाद रूत की किताब मिलेगी। पहली 5 किताबें मूसा की यानी कि शरीयत की 5 किताबें हैं, उसके बाद यशवा, कजात, फिर रूत, उसका 3 बाप जिसमें हम ये सीख रहे हैं। और हमने इस हवाला में, इस बयान में क्या सीखा पिछले दिनों में, 2 बातों को हमने मुकम्मल किया, और खुदा के रहनुमाई में रूह कुद्दस की कुदरत ने मैंने अपनी पूरी कोशिश की ताकि इन 2 लफ्जों का मतलब और इसकी रूहानी तासीर आप तक पहुंच पाए। और जहां पर हम तीसरी आयत में देखते हैं कि रूत की सास नयोमी ने उससे कहा सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने तई उस पर जाहिर ना करना। यहां जो हम तीसरी बात को सीखेंगे वो हमारे लिए बहुत गहरा मजमून है, और इसमें उम्मीद है कि हम खुदावंद के कलाम में से गहरी सच्चाइयां सीखेंगे। अपनी पोशाक पहन, यानी कि सादा मतलब में उसकी सास नयोमी उसे कहती है कि अपनी पोशाक पहन, यानी कि जो पोशाक तूने पहली पहनी हुई है उसे उतार डाल और तब्दील कर, या उसे कहती है कि उसे उतार कर तू दूसरी पोशाक पहन। इससे पहले कि हम पोशाक पर सीखें, आपकी याद दहानी के तौर पर यहां पर रूथ बॉयज को मिलने के लिए जा रही है जो कि उसका दुल्हा बनेगा, आगे चलकर हम सीखेंगे तीसरे बाप में, अगली नामी आज से बाप के अखीर तक हम देखेंगे। यहां पर उसकी सास उसे तरबियत देती है कि तू अपने दुल्हे को मिलने के लिए जा रही है, इसलिए रूत को शख्सी तैयारी करने की जरूरत है कि बॉयज से मिले, और उसे उसकी सास कहती है कि दुल्हन की तरह तैयार हो। क्यों उसकी सास ने उसे दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए कहा? 3 बातों पर हम गौर कर रहे हैं, सो तू नहा धो, खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन। रूत और नयोमी दोनों के जैसे हम कलाम में देखते हैं वो बेवा है। जब हम पहले बाप का मुतालिया करते हैं तो जब नयोमी और उसके 2 बेटे और एली मलक जब वो मोआब में थे तो पहले नयोमी का खावंद मर गया, उसके बाद उसके 2 बेटे मर गए जिन्होंने मोआबी औरतों से शादी की थी। सो यहां पर हम देखते हैं रूत और नयोमी दोनों जो के बेवा हैं। यहां पर हम देखते हैं कि उसकी सास उसे कहती है अपनी पोशाक बदल, यानी कि तू बेवा का वो लिबास उतार डाल, वो बेवा का लिबास उतार डाल और दुल्हन के लिबास को पहन, यानी कि वो पोशाक पहन जो तुझे जरूरी है क्योंकि तू अपने दुल्हे को मिलने के लिए जा रही है। और यहां पर हम देखते हैं के रूत जो के बेवा है अपनी सास की कहे के मुताबिक अपनी पोशाक पहनती है, और पोशाक पहनने से मुराद वो अपनी बेवापन की पोशाक उस लिबास को उतारती है। और हम देखते हैं हमारे दौर में बहुत दफा आप ड्रामों से फिल्मों से वाकिफ हैं कि इंडियन जो ड्रामे हैं उनमें जो बेवा है उसे एक लिबास दिया जाता है जो कि सफेद रंग का होता है, वो कोई मेकअप नहीं कर सकती, उसका खाना बहुत मुख्तलिफ सादा, उसकी सारी जिंदगी को सादा जिसे कह सकते हैं कि मातम भरी नजर आती है। इसी तरह यहां पर भी हम देखते हैं कि रूथ जो के बेवा है और उसे एक लिबास दिया गया जो कि वो पहने हुए है और ये उसकी निशानी है क्योंकि वो बेवा है। और यहां पर उसकी सास उसे कहती है अपने बेवापन के उस लिबास को उतार और उसे उतार कर तब्दील कर, यानी तू इसे जब हम इसकी तफसीर करते हैं तो इसका मतलब निकलता है यानी तू अपनी नाउम्मीदी गम और मातम की पोशाक को बदल, यानी के बेवा के उस लिबास को उतार डाल और दुल्हन की पोशाक को पहन जो खुशी और शादमानी और मसरत की क्या है नुमाइंदगी करती है। सो यहां पर आज हम देखेंगे सीखेंगे कि किस तरह नयोमी के इस सारे सिखाने के अमल में रूत उन बातों को सीखते हुए जाती है। और यहां पर हम तीसरा कदम सीख रहे हैं अपनी पोशाक बदल, अपनी पोशाक बदल यानी कि अपनी उस पुरानी जिंदगी को छोड़ और अपनी नई जिंदगी को शुरू कर। आज हम इस बात में से इस बयान में से सीखेंगे अपनी पोशाक पहन जो कि हमारे लिए बहुत ही रूहानी गहरा और सादा मतलब रखता है और हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। सो नयोमी को वो कहती है, नयोमी उसे कहती है रंज व गम और शिकस्ता दिली उदासी के इस लिबास को उतार डाल और शादमान हो जा और दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार कर सिंगार कर बॉयज को मिलने से पहले। ये नयोमी उसे सलाह देती है, उसे सिखाती है। और बाइबल मुकद्दस के आईना में जब हम देखते हैं रूहानी तौर पर जैसा कि बेवा की जिंदगी में यानी कि जिसका मर्द मर चुका हो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल गम से भरी हुई नाउम्मीदी की नजर आती है और बहुत दफा बहुत सी बातों का भी सामना करना पड़ता है जो कि भलाई की नहीं बल्कि गम पहुंचाने का बायस बनती है खासकर बेवाओं की जिंदगी में। सो यहां पर हम रूहानी तौर पर देखेंगे, मेरे साथ एक हवाला निकालें, यसाया नबी का सहीफा। यसाया नबी इसे यूं बयान करता है नस्ल इंसानियत की हालत को बयान करते हुए कि नस्ल इंसानियत की हालत खुदावंद यसु मसीह जो के निजात दहिंदा है उसके बगैर एक बेवा की मानद उजड़ी हुई वीरान शिकस्ता हाल और गमगीन है। यहां पर आज हम रूहानी तौर पर सीखेंगे क्योंकि जैसे यहां पर रूथ बोइज को मिलने के लिए जा रही है जो के अबरानी लफ्ज जो हम देखते हैं गोयल यानी के नजदीकी रिश्तेदार। और उस वक्त में पुराने अहदनामा के अगर कोई शख्स या किसी जायदाद को गुलामी में बेचा जाता तो नजदीक के करीबी के अलावा यानी के नजदीक के रिश्तेदार के अलावा और कोई भी ये तकाजा पूरा नहीं कर सकता था कि वो अपने अजीजों को छुड़ाने या छुटकारे का बायस बने। और यहां पर हम सीख रहे हैं कि रूत की जिंदगी में बोयज है जो उनका करीबी रिश्तेदार है जो उनके छुटकारे और मखलसी का बायस बनेगा। ये उनकी माली छुटकारा या मखलसी है जिसे कहते हैं, लेकिन आज हम रूहानी मखलसी और छुटकारे के बारे में देखेंगे। सो मेरे साथ निकालें यसाया 61 बाप उसकी पहली तीन आयात को देखेंगे। यहां पर यसाया नबी تسلیس سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے اور تسلیس اس سے مخاطب ہے. یسعیاہ نبی اس کا 61 باپ 60 تے ایک کاٹھ 61 باپ میں پہلی تین آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں, پہلی تین آیات میں ہم دیکھتے ہیں یسعیاہ نبی لکھتے ہوئے کہتا ہے, خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں, اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. یہاں پر غور کریں, خداوند یعنی کہ خداوند یسوع مسیح, خدا یعنی کہ خدا باپ, اور روح یعنی کہ روح القدس, یہاں پر آپ کو تسلیس نظر آتی ہے. اور جب آپ پہلی نو آیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر تسلیس مخاطب ہے یسعیاہ سے, اور یسعیاہ ان باتوں کو سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے. اور یہاں پر یسوع مسیح کا آنے کا مقصد اور مطلب بتایا گیا ہے, اور جو کہ دن ہم منانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, بڑا دن کرسمس, یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش, یعنی کہ نجات دہندہ کا اس زمین پر پیدا ہونا, یعنی کہ خدا انسان بنا اور بنی نو انسان کے چھٹکارے اور رہائی اور مخلصی کے لیے وہ کیا بنا, انسان بنا تاکہ ان کو. یہاں پر وہ صحیح بات یسعیاہ نبی ہمیں بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا آنے کا مقصد یعنی کہ مسا کیا جانا, یعنی کہ مخصوص ہونا, یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اسی لیے اس دنیا میں انسان کی صورت میں اسی دنیا میں آ رہا ہے, آیا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری, یعنی کہ وہ لوگ جو اس کے انتظار میں ہیں ان کو خوشخبری. اور اس نے مجھے کہتا ہے کہ بھیجا ہے شکستہ دلوں کو تسلی, یعنی کہ وہ لوگ شکستہ حال ہیں ان کو تسلی دی جائے, یعنی اور اگلی بات ہے قیدیوں کے لیے رہائی, یعنی کہ جو گناہ کی قید میں ہیں ان کی رہائی, اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان, یعنی کہ اس موت کے بندھن سے چھڑانے کا اعلان, تاکہ خدا کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں, اور سب غمگینوں کو دلاسا دو. یہاں پر خداوند کا بندہ یسعیاہ اس بات کو سنتے ہوئے لکھتا ہے. اور تیسری آیت پر غور کریں, جو کہ ہمارا حوالہ روت کی کتاب میں سے لیا گیا ہوا ہے, وہاں پر کیا لکھا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے. تیسری آیت میں, سہون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دو کہ ان کو راکھ کے بدلے سہرا, اور ماتم کی جگہ خوشی کا روگن, اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشو, تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. یہاں پر جب ہم لفظ سہون کو دیکھتے ہیں, اس سے مراد ہے یعنی کہ یروشلم کی ایک پہاڑی جس پر ہیکل یعنی کہ عبادت گاہ اور داؤد نبی کا محل واقع ہے جو کہ بنی اسرائیل میں ہے. اور ہم جو لفظ یہاں پر خلعت کا دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے سیم مطلب, یعنی کہ بالکل وہ لفظ جہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر روت کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے, اپنی پوشاک پہن, یعنی کہ پوشاک کو تبدیل کرنا. اور یہاں پر پوشاک کا دیا جانا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو غمزدہ ہیں, وہ لوگ جو راکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سہرا, جو ماتم یعنی کہ افسردگی, تنہائی, درد اور ہر طرح کی مشکل کے سامنے میں ہے, خداوند کہتا ہے ماتم کی جگہ خوشی کا روگن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشو, یعنی کہ وہ پوشاک. میں اور بھائی ذوالفقار اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, جب ہم نے اس لفظ کا مطلب دیکھا تو اس لفظ کا مطلب ہے یعنی کہ وہ پوشاک جو بادشاہ کی طرف سے یا عمرہ کی طرف سے عزت افزائی کے طور پر کسی کو دی جاتی ہے, और यहां पर ये रूहानी मायने बनी नू इंसान के लिए निकलते हैं कि यसु मसीह के बगैर, नजात दहिंदा के बगैर बनी नू इंसान की हालत क्या है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल यानी कि उसकी हजूरी, उसकी रासबाजी, उसकी शानो शौकत से क्या है, महरूम है। और यहां पर यसाया नबी कहता है कि अब मातम की जगह मातम नहीं बल्कि मातम की जगह खुशी होगी, उदासी की बदले क्या होगा। उदासी का यहां पर जो लफ्ज है, सही मतलब इसका हम देखते हैं रूत की जिंदगी में, वो उदास है, वो बेवापन की पोशाक को पहने हुए है और उसकी जिंदगी में खुशी नहीं, बजाय खुशी के ताने हैं, गम है, असुर्दगी है और दूसरे तरह के बहुत से बातें हैं। तो वहां पर उसकी सास उसे कहती है अपनी पोशाक पहन, यानी कि अपने गम के उस मातम और उस रंज की पोशाक को उतार और दुल्हन की तरह तैयार हो। और यहां पर हम देखते हैं कि ईमानदारों के लिए नस्ल इंसानियत की हालत क्या है खुदावंद के बगैर, के सब उसके जलाल से महरूम है, उनमें कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं पाई जाती। इंसान अपने किसी कोशिश से खुशी, इत्मीनान या रास्तबाजी के किसी काम से हमेशा की जिंदगी को कमा नहीं सकता। ये खुदा का फजल है और यही यीशु मसीह का इस जमीन पर आने का मकसद है, जिसके दिन को हम मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहां पर ईमानदारों को क्या दी गई है, पोशाक दी गई है। और रूत अपनी पोशाक बदलती है, यानी कि वो सोग और मातम के कपड़े उतारती है और खुशी का लिबास पहनती है। और आगे चलकर हम इसी बाब में देखते हैं, जब आप पहली 9 आयात का मुतालिया करते हैं तो आपको इसमें दिखता है कि किस तरह तसलीस बात करती है निजात के बारे में, रहाई के बारे में, खुशी के बारे में और खुदा के फजल के बारे में। और 10वीं आयत में यहां पर हम यसाया नबी का जवाब देखते हैं, जब वो इन सारी बातों से खुश होता है तो कहता है, 10वीं आयत में देखें, ये वही लफ्ज जो रूत की किताब में उसके लिबास के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहां पर वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जब हम अबरानी जबान का मुतालिया करते हैं। सो 10वीं आयत में लिखा है, यसाया कहता है, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। यहां पर वो बिल्कुल लफ्ज जो रूत की किताब में इस्तेमाल हुआ है, अपनी पोशाक बदल, यहां पर उसका जो उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है, उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने मुझे रासबाजी के खलित से, रासबाजी के खलित से, यानी के उसने मुझे वो पोशाक, रासबाजी की वो पोशाक से क्या किया, मुलब्बस किया, यानी के मुझे वो पोशाक पहनाई जैसे दुल्हा सेहरे से, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को अरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना संघार करती है। यहां पर देखे, वहां पर रूत 3 बाप उसकी 3 आयत में तैयारी कर रही है दुल्हन की तरह अपने दुल्हा से मिलने के लिए। और यहां पर रूहानी तौर पर हर एक ईमानदार को ये रास्तबाजी की पोशाक हासिल है। और ये पोशाक कब हासिल होती है, जब हम खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाते हैं तो ये रास्तबाजी की पोशाक हमें पहनाई जाती है, जिसे पालूस उसूल कहता है रोमियो 13 बाप उसकी 14वीं आयत में, बल्कि खुदावंद यसु मसीह को पहन लो। रोमियो 13 बाप उसकी 14वीं आयत में कहता है, बल्कि खुदावंद यसु मसीह को पहन लो। और हम इस तस्वीर को देखते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारे वो मुर्दापन, वो मातम की पोशाक जो कि पुरानी इंसानियत, उसका जोर, उसकी ताकत, मौत के वो कपड़े हम उतार देते हैं। और इसकी तस्वीर हमें यूहन्ना 11 बाप उसकी 44वीं आयत में नजर आती है, जहां पर यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। और यूहन्ना 11 बाप उसकी 44वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, जो मर गया था यानी के लाजर, वो कफन से हाथ बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लपेटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। यहां पर हम देखते हैं जब हम मौत के कपड़े उतारते हैं तो ये बिल्कुल तस्वीर हमारे सामने है कि हम उस मौत यानी कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होते हैं। उस कफन को उतार कर हम यीशु मसीह की रासबाजी को हासिल करते हैं। और बाइबल मुकद्दस इसे यूं बयान करती है, मेरे साथ निकालें, ये खुशखबरी है जो सबके लिए है, ये वो खबर है जो सबके लिए है। और मुझे यकीन है कि जब रूत ने ये बात को अपनी सास के मुंह से सुना कि बोएज हमारा करीबी का रिश्तेदार है, सो तू नहा धो और खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन, यानी के अपने मातम और बेवापन की जो जिंदगी है उसे उतार डाल और अपने आप को तैयार कर। सेम वहां पर हम देखते हैं उसने उस उजड़ेपन की जिंदगी, उस गमजदा जिंदगी के लिबास को उतारा और दुल्हन की तरह यानी कि खुशी का लिबास पहना और अपने आप को तैयार करती हुई नजर आती है। सो मेरे साथ देखें इफिसियों, नया अहदनामा इफिसियों 4 बाप उसकी 22वीं आयत में पालूस रसूल इससे यूं बयान करता है, जिसे यूहन्ना कहता है कि जो मर गया था वो कफन से हाथ बांधे हुए, यानी कि उसने अपना कफन उतार दिया लाजर ने, और वो यीशु मसीह ने क्या किया, इसे जाने दो। यीशु मसीह ने उसे कहा कि इसे जाने दो। और यहां पर इफिसियों 4 बाप उसकी 22वीं आयत में पालूस रसूल कहता है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेबों की शहवत के सबब से खराब होती जाती है। यहां पर वो बनीनु इंसान की हालत को बयान करता है, खुदा से, खुदा के बगैर, यीशु मसीह को निजात दहिंदा जाने बगैर। वो कहता है वो फरेबों की शहवत, गम शिकस्ता दिली, हर तरह की कैद और असुरदगी और असीरी है। और कहता है 23वीं आयत में, अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। बिल्कुल वही लफ्ज जो हमने रोमियो 12 बाप उसकी 2 आयत में देखा, अकल नए हो जाने से। कहता है रूहानी हालत में नए बनते जाओ। 24वीं आयत पर गौर करें, और नई इंसानियत को पहन लो, नई इंसानियत को पहन लो, जिसे उसने रोमियो 13 बाप उसकी 14 आयत में कहा, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। यहां पर कहता है नई इंसानियत को पहन लो, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रासबाजी और पकीजगी में पैदा की गई है। और ये है वो खुशखबरी कि हर एक ईमानदार को ये पोशाक हासिल है जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। और अगर कोई उसके बगैर है तो फिर वो रूत की तरह, उस बेवापन यानी के बेवा की तरह मुर्दगी की जिंदगी में जिंदगी गुजार रहा है। सो यहां पर नई इंसानियत यानी के यीशु मसीह को पहनना, और पालूस रसूल से बार बार दोहराता है, क्योंकि बहुत दफा हम इंसान होते हुए क्या करते हैं, अपनी सोच को दूसरी तरफ लगाते हैं। और ये है खुदा की खुशखबरी और खुदा की बरकत, और ये है खुदा का فیصلہ بنی نو انسان کے لیے کہ ان کے لیے یہ مفت بخشش ہے. اور میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, کلسیوں تین باپ میں بھی پالوس رسول اسی بات کو دوبارہ کہتا ہے. کلسیوں تین باپ اس کی نویں آیت میں وہ اس بات کو کہتا ہے. دوسرے حصہ میں دیکھتے ہیں ہم, پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کفن, وہ موت کا کفن جو ہے اسے اتار ڈالو کہتا ہے, اور نئی انسانیت کو پہن لو جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر بنتی جاتی ہے. یہاں پر وہ اپنے خالق یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اپنے خالق کی اسے پہن لو اور اس کی نئی انسانیت میں اس کی مانند بنتے جاؤ. اور یہ ہے وہ پوشاک, جیسے روت کو وہ خوشی کی پوشاک حاصل ہوئی, اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ بوئز کی کیا بنے گی, دلہن بنے گی. اور ہم جو ایماندار ہیں, ہم جب مسیح یسوع کی اس مہیا کردہ اس بخشش کو جو فضل کے باعث ہے, کسی ہمارے کام کے باعث نہیں, کسی ہماری قابلیت کے باعث نہیں, بلکہ یہ اس کی محبت کے باعث ہے, اس کے فضل کے باعث ہے کہ اس نے ہمیں اپنی راست بازی بخشی. اور پالوس رسول کہتا ہے دوسرا کرنتھیوں 5:5 اس کی 21 آیت میں, وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بنا تاکہ ہم اس کی راست بازی ہو جائیں. جس کا مطلب ہے کہ اس کی راست بازی میں شامل ہونا, اس کی راست بازی کو حاصل کرنا. اور پالوس رسول اسے بڑے فخر کے طور پر کہتا ہے, افسیوں 2:2 اس کی 8 اور 10 آیت میں وہ کہتا ہے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, جیسے اس نے نیومی کی بات پر یقین کیا اور اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ کیا حقیقت بنے گا. اسی طرح آج کوئی بھی بہن ہے, بھائی ہے, بزرگ ہے, بچہ ہے, اگر اس نے یسوع مسیح کی اس پوشاک کو اپنی زندگی میں نہیں لیا تو سادہ سی بات ہے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, یعنی کہ وہ نجات کے کپڑے پہنائے گئے ہیں, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے, یہ خدا کا منصوبہ ہے, یہ خدا کا فضل ہے جو یسوع مسیح میں ہم پر ظاہر ہوا. اور آگے پالوس رسول کہتا ہے, نہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے, کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا. خدا کی نجات راس بازی اس کے فضل کے باعث ہے. کوئی اور سونا چاندی یا کوئی ہمارا انسانی چڑھاوا خدا کو یا خدا کی اس نجات کو ہم کیا حاصل نہیں کر سکتے ہمارے کسی کام کے باعث, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یسوع مسیح اس بھید کی بات کو سنے. گتسمنی باغ میں یسوع مسیح نے کیا کہا, جب ہم متی 26:6 اس کی 39 آیت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس بھید کو, بے شک پہلے آپ نے سنا ہے اس آیات کو لیکن غور سے سنیں اس کا تعلق کس طرح نجات سے ہے. وہاں پر یسوع مسیح جب تھوڑا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر دعا کرنے لگا تو یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے, دیکھیں اسے متی 26:6 اس کی 39 آیت میں, اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. کون سا پیالہ, اس پر ہم ابھی دیکھتے ہیں, تو بھی نہ جیسے میں چاہتا ہوں بلکہ جیسے تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. یہاں پر پہلے بیان کو دیکھیں, اگر ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. کون سا پیالہ, یہاں پر یسوع مسیح اپنے باپ سے بات کرتا ہو, کہتا ہے کہ اگر کوئی اور راستہ ہے, اگر کوئی اور طریقہ یا کوئی اور چیز ایسی قابل ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے. یہاں پر یسوع مسیح بات کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں صلیب پہ جاؤں اگر کوئی چڑھاوا یا کوئی ایسی قربانی جو کہ 4000 سال تک یہودی گزرانتے آ رہے ہیں کوئی ایسا کام ہے تو اسے استعمال کر لیا. لیکن خداوند کا کلام یہاں پر کہتا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے تو بھی میری نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو. اور پالوس رسول اسے بیان کرتا ہے کہ کوئی اور چیز اس قابل نہیں ٹھہری کہ بنی نونسان کا کفارہ ہو. اور یہاں پر اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل سکے. یعنی کہ یہ دوسری حالت بیان کی گئی ہے کہ یونانی میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور چیز بنی نو انسان کو نجات دینے کے لیے استعمال کی جائے. صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا وہ پاک خون ہے, یسوع مسیح کی وہ روحانی موت ہے جو صلیب پر اسے سامنا کرنی ہے تاکہ ہم خدا کے فضل سے اس کی نجات یعنی کہ نجات کے کپڑے پہنیں. آج اپنی زندگی میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یہ وہی نجات کے کپڑوں کا ذکر جس کا ہمیں بالکل وہی مطلب ملتا ہے پیدائش 3 باب اس کی 21ویں آیت میں, جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو کرتے بنا کر پہنائے. اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور یسوع مسیح ہے وہ جو ابتدا سے ذبح کیا ہوا برا ہے جس کے خون جس کی زندگی کے باعث ہی ہم زندگی حاصل کرتے ہیں. اور اسے بائبل مقدس میں پالوس کہتا ہے پہلا آدم آیا اور وہ بنی نو انسان کی زندگی میں موت لایا, اور دوسرا آدم آیا اور اس نے زندگی دی. یعنی کہ پہلے آدم نے مزہ چکھا تو موت پیدا ہوئی, دوسرے آدم نے موت کا مزہ چکھا تو زندگی حاصل ہوئی. آج بہت سے مسیحی ایماندار اس شادمانی اس برکت اس بخشش میں کیا ہے خوش نہیں ہیں کیونکہ بائبل مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بائبل مقدس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا, کیونکہ یسوع مسیح نے اسی لیے کہا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور اس کا منہ سے نکلا ہوا کلام یسوع مسیح ہے, اس کے باعث ہی ہم زندگی جیتے ہیں. اس کے بغیر بیوہ کی سی حالت ہے, اس کے بغیر مردہ لازر کی سی حالت ہے, مردگی ہے, زندگی کہیں پر نظر نہیں آتی. آسردگی غم اور کیا ہے شکستگی ہے قید ہے اسیری ہے. اس لیے وہاں پر اس کی ساس اسے کہتی ہے سو تو نہا دھو خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن. آج آپ کے لیے دعوت ہے, اگر آپ نے سننے والوں میں سے کسی نے پہلے اس پوشاک کو حاصل نہیں کیا تو یہ مفت ہے, یہ مفت ہے, یہ آب حیات کا چشمہ, یہ زندگی مکاشفہ. 22ویں باب اس کی 16-17 آیت میں لکھا ہے جو کوئی چاہتا ہے آب حیات میں سے مفت پیئے, یہ خدا کی بخشش ہے. آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں. خدا باپ جیسے تو نے روت کی زندگی میں اس کے سارے غم کو دور کرنے کے لیے انتظام کیا, ویسے ہی روحانی طور پر ہم جو مردہ تھے بنی نو انسان جو تجھ سے دور تھا جو گناہ میں تھا جو موت میں تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا, تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے وہ پیالہ پیا اور اس کے بغیر مخلصی نہ تھی. سو خدا باپ اس وقت سننے والوں کو جو اب سن رہے ہیں یا مستقبل میں سنیں, خداوند ہم تیرے نمائندگی کرتے ہوئے دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تو آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے. نجات صرف ایمان کے وسیلہ سے ہے، اس میں کوئی انسان کا کام شامل نہیں۔ سو خداوند کے حضور اپنی ذاتی اور شخصی حالت میں خاموشی میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا باپ، میں تیرے بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں، رکھتی ہوں، آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا باپ اس دعا کو سن، جتنوں نے تجھے، تیرے بیٹے کو، تیرے کلام کو قبول کیا ہے، برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔